दिन भर तारीख 19 दिसंबर दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। गुजरात परिणामों पर बोले राहुल गांधी, कांग्रेस ने बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया।
मोदी जी ने भ्रष्टाचार की बात नॉन स्टॉप करी, राफेल में घपला हुआ है, आप इसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं कहते हो, यह है क्रेडिबिलिटी इशू।
बीजेपी का पलटवार, राहुल की कमान में पार्टी लगातार रही है हार। गुजरात हिमाचल में कौन बनेगा सीएम, बीजेपी कर रही है माथापच्ची। चलिए नरोदा पाटिया बस्ती में, जहां दंगाइयों ने 2002 में हिंसा का तांडव किया, क्या घाव भर गए।
जब तक हमारी सांस रहेगी, जब तक हमें याद रहेगी वो बात, ये रात दिन हमारे साथ रहने वाले, हमने उनसे इतनी पनाह मांगी तो उन्होंने हमारे को डंडों से मार मार के हमें भगाया।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप राय से। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी नतीजों को मोदी ने विकास और जीएसटी पर मुहर बताया है, लेकिन अपने चुनावी भाषणों में उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी की विश्वसनीयता नहीं बची है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री उम्मीदवार की खोज को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। सऊदी अरब की अगुवाई वाले सैन्य संगठन ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब की राजधानी रियाद की ओर दागी गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। ऐसी खबरें हैं कि रियाद में धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। इससे पहले यमन में हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने रियाद की ओर मिसाइल दागे हैं। यमन के गृह युद्ध में हूती विद्रोही सऊदी गठबंधन के साथ लड़ाई कर रहे हैं। पिछले महीने भी ईरान समर्थित विद्रोहियों ने रियाद पर मिसाइल दागे थे। सऊदी अरब ने कहा है कि वो इस हमले को ईरान की आक्रामकता मान रहा है। हूती विद्रोही टीवी चैनल अल मसीरा पर एक प्रेजेंटर ने कहा कि रॉकेट के निशाने पर शाही इमारतें थीं। एक बहुत ही अर्जेंट और अहम खबर है। मिसाइल फोर्स ने घोषणा की है कि उसने रियाद में अल यमामा पैलेस पर बुरकान 2H बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये थे टीवी प्रेजेंटर के शब्द। रूस और चीन ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की तीखी आलोचना की है। सोमवार को ट्रंप ने नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में रूस और चीन को अमरीका का प्रतिद्वंद्वी बताया गया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने वाशिंगटन पर शीत युद्ध की मानसिकता अपनाने का आरोप लगाया है। उधर रूसी प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने इसे साम्राज्यवादी और दुनिया में केवल एक महाशक्ति के अस्तित्व बनाए रखने वाला बताया है। इस नीति में साम्राज्यवादी रुख साफ झलक रहा है और साथ ही एक ध्रुवीय दुनिया के विचार को त्यागने के प्रति अनिच्छा भी साफ दिख रही है। बेशक हम इस बात पर सहमत नहीं हो सकते कि हमारा देश अमेरिका के लिए कोई खतरा है। ये थे दमित्री पेस्कोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्पेन के स्वायत्त इलाके कैटलोनिया में अगले गुरुवार को चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव पूर्व अंतिम ओपिनियन पोल्स में आज़ादी की समर्थक और विरोधी पार्टियों में बहुत कम अंतर दिखाई दे रहा है। पोल्स के अनुसार अलगाववादी धड़े को 47%, जबकि बाकियों को 44% वोट मिलने के अनुमान हैं। इन अनुमानों में प्रो स्पेनिश सिटीजन पार्टी को सबसे बड़े अलगाववादी ग्रुप रिपब्लिकन लेफ्ट पर एक अंक की बढ़त हासिल है। अलगाववादी और कैटलोनिया के पूर्व नेता कार्ल्स पुजीमोंट बेल्जियम में रहते हुए वीडियो संदेशों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। म्यांमार की सेना ने कहा है कि रखाइन प्रांत में मिली सामूहिक कब्र को लेकर जांच की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने आरोप लगाए थे कि इस प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सैन्य बलों ने बड़े पैमाने पर हिंसा की है। फेसबुक पर सेना प्रमुख जनरल मिन आउंग ग्लैंग ने कहा कि मोंडगांव में एक ग्रामीण कब्रिस्तान में अज्ञात लोगों के शव मिले हैं। ये इलाका सबसे बुरी तरह हिंसाग्रस्त इलाका रहा है। बयान में सैन्य प्रमुख ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले सुरक्षा बल के जवानों को बख्शा नहीं जाएगा। अमरीकी शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में सुरक्षा बलों से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रबर और प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल बंद करने की अपील की है। उनका दावा है कि रबर की गोलियों से गंभीर घायल होने और मौत की संभावना अधिक होती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत, तुर्की, ब्रिटेन और इसराइल में पिछले 3 दशकों में रबर या प्लास्टिक की गोलियों से घायल होने वालों में 3% लोगों की मौत हो गई, जबकि 15% स्थायी तौर पर अपंगता का शिकार हुए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। गुजरात और हिमाचल में चुनाव हो चुके, परिणाम आ चुके और अब जो जीतने वाली बीजेपी है वो सरकार बनाने के लिए माथापच्ची करने में जुट गई है। साथ ही शुरू हो गया है चुनाव नतीजों को अपने तरीके से देखने यानी कि विश्लेषण और आत्ममंथन का दौर भी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों परिणाम आने के बाद से ही यानी कि कल से ही वाक युद्ध में जुट गए हैं। चुनाव के पहले जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था वो नतीजे आने के बाद भी जारी है। दोनों राज्य यानी कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सत्ता हाथ से निकल जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी आज संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए संसद पहुंचे, लेकिन इसी दौरान वो मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब दिया, कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव हारती जा रही है। राहुल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता कम हो रही है। सुनिए इस बयानबाजी पर हमारे संवाददाता जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को शिकस्त दी। इस चुनावी हार के बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विश्वसनीयता का सवाल उठाया। कुछ पत्रकारों से बातें करते हुए उन्होंने कहा,
मोदी जी ने भ्रष्टाचार की बात नॉन स्टॉप करी। आज राफेल के मामले में और जय शाह के मामले में मोदी जी के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? देश ये जानना चाहता है कि आपने नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार की बात की। जय शाह अमित शाह के पुत्र ने 50,000 रुपए को 80 करोड़ में 3 महीने में बदला, राफेल में घपला हुआ है, आप इसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं कहते हो? ये है क्रेडिबिलिटी इशू।
उन्होंने आगे कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ नहीं सकती। 3-4 महीने सिर्फ मैंने नहीं बल्कि गुजरात कांग्रेस और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, इसका रिजल्ट आपने देखा है कि बीजेपी को जबरदस्त झटका मिला है। मुझे इस दौरान पता लगा कि मोदी के मॉडल को गुजरात के लोग नहीं मानते। उधर राहुल गांधी की आलोचना के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस हार को ही जीत मानती है तो उसे ऐसी जीत मुबारक हो।
लोकसभा से लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार ही हार हो रही है, अब हार को ही विजय मानना तो मुबारक हो ऐसी विजय। और भी जगह चुनाव है, वहाँ भी आपको ऐसा ही विजय मिलेगा, यानी आप हार जाओगे।
राहुल गांधी का कहना था कि गुजरात ने मोदी और बीजेपी को मैसेज दिया है कि उनके अंदर का क्रोध उनके काम नहीं आएगा और इसको प्यार हरा देगा। उनके अनुसार ये संदेश गुजरात के लोगों ने दिया है। उन्होंने गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा किया। उधर भारतीय जनता पार्टी के कुछ दूसरे नेताओं ने भी कहा कि चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री की जो आलोचना कर रहे हैं वो एक नीचे स्तर की सियासत है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
ये तो बयानबाजी हुई, लेकिन अब लाख टके का सवाल ये है कि गुजरात व हिमाचल में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दोनों राज्यों में बीजेपी के भीतर किन नामों को लेकर सुगबुगाहट है? पहले चर्चा करते हैं गुजरात की। 182 सीटों वाली विधानसभा में 99 सीटें जीतने वाली बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए क्या कोई नया चेहरा सामने आ सकता है या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ही सत्तासीन रह सकते हैं? कौन कौन है इस रेस में? अब से कुछ देर पहले मैंने बात की अहमदाबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट से।
गुजरात में विजय रूपाणी तो मुख्यमंत्री है ही, और अमित भाई शाह ने चुनाव के पहले 3-4 अलग अलग फोरम में ये कहा था कि गुजरात का चुनाव जो है हम विजय रूपाणी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और अगले मुख्यमंत्री वो ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने हिंट दिया था। लेकिन पिछले 24 घंटे में जब से गुजरात में रिजल्ट आया है और भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी, खास करके सौराष्ट्र रीजन जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 54 सीट में से भाजपा को 23 सीट मिली है जबकि कांग्रेस पार्टी को 30 सीट और एक सीट जो है एनसीपी के खाते में गई है। इसलिए इस बात के ऊपर सोच चल रही है कि गुजरात में अगला सीएम कौन होगा। जो अभी जो नाम चल रहे हैं उसमें एक नाम है वजूभाई वाला, जो अभी बेंगलोर में यानी कि कर्नाटक में गवर्नर है। ऐसी बात वहां के सूत्रों से पता चल रही है कि उन्होंने अपना गवर्नर हाउस खाली करके गुजरात आने की या फिर किसी और स्टेट में तबादला लेने की तैयारियां शुरू कर दी है। दूसरा नाम जो चल रहा है वो मनसुख मांडविया है, जो लेउआ पटेल है, सौराष्ट्र को बिलोंग करते हैं और सौराष्ट्र में पाटीदार समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। वो इस बार परिणामों में स्पष्ट हो रहा है क्योंकि अमरेली डिस्ट्रिक्ट, मोरबी डिस्ट्रिक्ट, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। तो पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट से एक भी सीट न मिलना वो साफ बाहर जाहिर बात है कि लिगुआ पाटीदार जो है वो भाजपा से नाराज है, इसलिए उनका तुष्टिकरण करने के लिए हो सकता है कि मनसुख मांडविया या केंद्रीय, दो केंद्रीय मंत्री के नाम चल रहे, एक मनसुख मांडविया और दूसरे पुरुषोत्तम भाई रूपाला, जो दोनों अभी गुजरात से राज्यसभा के सदस्य हैं और मोदी जी की कैबिनेट में है, और चौथा नाम चल रहा है
स्मृति ईरानी का भी नाम, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ,
चौथा नाम जो चल रहा है स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है, वो स्मृति ईरानी का नाम भी कल से चल रहा है, और स्मृति ईरानी जब यहाँ गुजरात में कैंपेन करने आई थी तो उन्होंने काफी जगह गुजरात में कैंपेन किया था, काफी जगह पब्लिक मीटिंग भी ली थी और उनको रिलेटिवली अच्छा रिस्पांस भी मिला था, और इस बार मैंने खास ऑब्जर्व किया कि स्मृति ईरानी ने ज्यादातर पब्लिक मीटिंग्स जो थी वो गुजराती में संबोधित की थी, वो ये मैसेज देती थी हर एक जगह कि मैं गुजराती हूँ, गुजरात की बहू हूँ, मुझे गुजराती आती है, मेरा पति पारसी है और हम लोग शाम को प्यार से लड़ते भी हैं तो गुजराती में लड़ते हैं, तो इस तरह की मजाक भी वो अपनी पब्लिक मीटिंग्स में करती थी, इसका मतलब वो गुजरात के लोगों से एक नाता जोड़ने की कोशिश भी कर रही थी। सूरत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो प्रॉब्लम हुआ था, वहां के लोग जीएसटी और नोटबंदी को लेकर नाराज थे, उन लोगों के साथ भी स्मृति ईरानी ने काफी डिटेल में नेगोशिएशन किए थे और नतीजा ये है कि 12 में से 11 सीट जो है सूरत में भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है।
वरिष्ठ पत्रकार अजय उमठ उन संभावित नामों की चर्चा कर रहे थे जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार यानी कि नए चेहरे हो सकते हैं गुजरात में। और अब यहीं पर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ की 68 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटें और कांग्रेस को 21 सीटें मिली, पर पार्टी को झटका उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल की हार से लगा है। अब बीजेपी के पास कौन कौन से नाम है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, और जानकारी के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की शिमला में मौजूद स्थानीय पत्रकार हेमंत कुमार से।
बीजेपी जो आपको पता ही है कि खुश होके भी उतनी खुशी नहीं मना पाई है, क्योंकि उनका जो सीएम के प्रत्याशी थे और बड़े गाजे बाजे के साथ उनका डिक्लेयर किया था तो वो हार गए हैं
धूमल साहब।
उसके बाद अब नए सिरे से मंथन शुरू हो रहा है, नए सिरे से तलाश हो रही है पार्टी में कि अब कमान कौन संभाले। अच्छा खासा जो मैंडेट मिला है यहाँ पे, तो इसमें चूंकि बीजेपी प्रयोग बहुत करती रही, हमने अन्य राज्यों में देखा है दिल्ली से, तो अभी जो चुने हुए विधायकों में से ही अगर बनना है तो उसमें तो जयराम ठाकुर है, मंडी जिले से संबंध रखते हैं और पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं पार्टी के और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। दूसरे डॉक्टर राजीव बिंदल है, ये एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से नाहन कंस्टिट्यूंसी से चुन के ये आए हैं। तो मौजूदा जो चुने गए लोगों में तो अभी इनके दो के नाम चर्चा में है किसी ना किसी तरह से। फिर सबसे ज्यादा जो चर्चा यहाँ शुरू से रही वो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका तो पहले आप कहिए कि साल भर से नाम उनका चला हुआ था सारा, लेकिन ऐसा बनी नहीं बात बाद में और उनको धूमल जी को कर दिया था, उनका भी नाम है। तो ये तीन नाम तो मेन है जो इस वक्त इनकी चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी अगर कोई दिल्ली से मैं कहूं कि कोई ऐसा अचंभा जो करती रहती है, चाहे हरियाणा में किया था या
तो, एक नया नाम उतार दे,
एक नया नाम जिसको मैं कहूं कि कोई सरप्राइज ही कुछ हिमाचल के खाते में हो सकता है।
क्या इस तरह के भी प्रयास हो रहे हैं कि धूमल जी को फिर से मुख्य धारा में ले आया जाए किसी तरह से?
बिल्कुल लगे हुए हैं और वो रात से ही एक्टिव हो गए हैं, 11-12 बजे मैं कहूँ कि आधी रात तक भी एक्टिव रहे इस तरह से लोग जो हमें सूचना मिली है। एक जो चुने हुए यहाँ पे जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने तो कल ही कह दिया था कि मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूँ। आज सुनने में आया है कि एक दो नाम कुछ और बीच में ऐसे कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि चलो किसी तरह से धूमल जी का हम कुछ करें पुनर्वास उस तरह से। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल मुझे दिख रहा है, मुझे लगता नहीं है कि ये सिरे चढ़ जाएगी बात तो। लेकिन आपको पता है कि बड़ा अप्रत्याशित घटनाक्रम रहते हैं बीजेपी में, कुछ भी संभव है राजनीति में।
राजनीति में कुछ भी संभव है। जी हेमंत कुमार चर्चा कर रहे थे कि राजनीति में कुछ भी संभव है। कार्यक्रम में आगे चुनाव नतीजों का विश्लेषण करेंगे, थोड़ा सा ठहर कर।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर। अब थोड़ा कल आए चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटें जीती और कांग्रेस का सहयोगियों के साथ जीत का आंकड़ा है 80 का। इसी तरह गुजरात व हिमाचल के जो आंकड़े हैं वो क्या कहानी कह रहे हैं, हमारे सहयोगी इकबाल अहमद ने बात की इन आंकड़ों को समझने के लिए CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार से।
5 बड़ी बातें, 5 टेकअवेज क्या है इन चुनावी नतीजों के?
गुजरात के जो नतीजे आए हैं उसको समझ पाना थोड़ा कठिन हो रहा है। अगर आप सीटों के दृष्टिकोण से देखें बीजेपी और कांग्रेस को, तो लगता है कि मुकाबला बड़ा कांटे का टक्कर का था। 99 सीट्स और एक तरफ 77 सीटें हैं। अगर वोटों को देखें तो लगता है कि बहुत बड़ा फासला था। कांग्रेस के पास 41% वोट है और बीजेपी 49% वोट, 8% का फासला। बाइपोलर कंटेस्ट में 8% का फासला बहुत बड़ा होता है। तो समझ पाना, इसको अनफोल्ड करना कि क्या सचमुच कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि है, शायद थोड़ी उपलब्धि है क्योंकि उन्होंने वोटों का प्रतिशत बढ़ाया है, क्या बीजेपी की बहुत बड़ी हार है? सीटों के दृष्टिकोण से लगता है 16 सीटें हार गए, लेकिन वोटों के अनुपात में देखें तो पिछली बार की तुलना में भी उनका वोट 1.5% बढ़ता है। तो ये कह पाना कि गुजरात का चुनाव का एक ये निष्कर्ष है और उसको बिल्कुल इसकी एक निचोड़ ये है, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में मुझे लगता है बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। हिमाचल में आमतौर पर जीत हार का फासला जो है वो 4-5% रहता है, इस बार 7.5% का फासला है। और अगर सीटों के दृष्टिकोण से भी देखें तो बीजेपी के पास कांग्रेस से दुगनी सीटें हैं। तो हिमाचल में बीजेपी ने एक जबरदस्त करारी जीत हासिल की है। बार बार बात होती है कि क्या कैंपेन का चुनाव पर कितना असर पड़ता है। हमें लगता है इस चुनाव में, खासकर गुजरात के चुनाव में, कैंपेन का बहुत असर पड़ा। शुरुआती दौर के कैंपेन में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की, लेकिन बाद में जो 10 दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का कैंपेन किया, मुझे लगता है उससे चुनाव बहुत बदल गए। एक और बड़ी बात है, आंकड़ों के नजरिए से देखें, शायद ही कोई राज्य होगा जहां पे कि बाइपोलर कंटेस्ट में भी दो पार्टियों के बीच 93% वोटों का बंटवारा हो जाए। ये और अगर आप गुजरात के इस चुनाव को देखेंगे तो 93% वोट बीजेपी और कांग्रेस के हिस्से में जाती है। ये इस बात का सूचक है कि इलेक्शन कितना कीनली कंटेस्टेड था और दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा के चुनाव लड़ रही थी।
हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश हकीकत में वो जो तिकड़ी है उनसे उतना कांग्रेस को लाभ नहीं हुआ जितना वो उम्मीद कर रहे थे।
पिछले 2012 के चुनाव में कांग्रेस के पास 39% वोट्स थे और इस बार कांग्रेस के पास 41% वोट है। कांग्रेस के पिछले बार के चुनाव के तुलना में लगभग 2.5% वोटों का इजाफा हो रहा है। और अगर हम ये तिकड़ी को माने तो इनसे, गठबंधन से, यही कोई 2.5-3% वोटों का फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर ये वोट 7-8-10% होते तो बीजेपी को हराने में सक्षम हो जाते। जाहिर है ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये काफी हद तक काम नहीं कर रहा।
नोटा के बारे में बहुत बातें हो रही हैं कि 1.5-2% तक, इतनी बड़ी संख्या में क्या ये चौंकाने वाली खबर है?
बिल्कुल चौंकाने वाली नहीं है। किसी आंकड़े को सिर्फ स्टैंड अलोन देखने से हमें समझ नहीं आता है, उस आंकड़े को कॉम्पेरेटिव दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। क्या एक 1.8% नोटा को वोट मिले हैं, हमें ये देखना चाहिए कि पिछले 3 सालों में जितने विधानसभा के चुनाव हुए क्या ये आंकड़ा परसेंट के हिसाब से दूसरों से बहुत कम है, बहुत ज्यादा है? आप देखेंगे कोई खास अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। हो सकता है कहीं 1% हो, 1.1-1.2% हो, 1% क्या लगभग बराबर रहता है। थोड़ा सा शायद आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़े पॉइंट में समथिंग, तो बहुत इसके मायने नहीं निकालने चाहिए। ये जरूर है कि कई कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है, इतना कॉम्पिटिटिव इलेक्शन था कि कई कंस्टिट्यूएंसी में जीत हार का फासला बहुत छोटा रहा है। और अगर उन कंस्टिट्यूएंसी में देखें तो कुछ कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है कि जीत हार के जो फासला है उससे ज्यादा लोगों ने नोटा दिया, इसी के लिए नोटा थोड़ी चर्चा में आ गई है इस चुनाव।
महिलाएं कहीं न दिख रही है, न कैंपेन में उस तरह से दिखी, हालांकि पार्टियों ने अपने विमेन कैंडिडेट को जरूर उतारा, तो आपने क्या पाया?
आंकड़ों के नजरिए से बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि गुजरात के इस चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में बीजेपी के लिए ज्यादा वोट किया। 100 में से 48 पुरुषों ने बीजेपी के लिए वोट किया तो 100 में से 50 पुरुषों ने बीजेपी के लिए वोट किया। ऐसे लगेगा ये 2% का ही तो फासला है, लेकिन चूंकि महिलाओं और पुरुषों का मतदाताओं में अनुपात लगभग बराबर है तो 2% का अंतर बहुत बड़ा फासला क्रिएट कर देता है। और बीजेपी ने जो 8% से बढ़त हासिल की है उसमें महिला वोट का भी कहीं ना कहीं योगदान है।
आंकड़ों का जाल समझा रहे थे CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार। अगर गुजरात चुनाव परिणामों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले लेकिन शहरों में बीजेपी ने बाजी मारी। हमारी सहयोगी कमलेश कुमार ने बात की वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल से और पूछा कि गांवों में जो जादू कांग्रेस का चला बीजेपी का नहीं चला, वजह क्या थी?
ग्रामीण इलाकों में जहां पे भाजपा ने मार खाई है वहां पे सबसे पहला जो कारण था वो पाटीदार आरक्षण को लेके था। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर पटेल कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनकी आरक्षण की मांग भी थी, और दूसरा ज्यादातर वो लोग पटेल किसान है, पटेल किसानों के साथ अदर कम्युनिटी के भी किसान हैं, जिनकी भी समस्या ये थी कि उनको मिनिमम प्राइस कपास और बाजरा में नहीं मिल रही, इसको लेके अपनी नाराजगी सरकार को जता रहे थे। जब तक नरेंद्र मोदी गुजरात में थे उनका ये आरोप था कि भारत सरकार की नीतियों के कारण आपको मिनिमम प्राइस नहीं मिल रही, लेकिन पिछले 3 साल से नरेंद्र मोदी खुद देश के प्रधानमंत्री है और सरकार होने के बावजूद भी किसानों को मिनिमम प्राइस नहीं मिली। मूल्य नहीं मिलने के कारण जो नाराजगी थी उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में भाजपा ने काफी अपने नंबर्स कम कर दिए।
लेकिन किसानों ने, वहाँ के लोगों ने कांग्रेस में ऐसी क्या उम्मीद देखी?
शहर हो या गाँव हो, ये टोटली ये प्रो बीजेपी है। हालांकि यहाँ पे लोग जो एंटी बीजेपी हुए वो प्रो कांग्रेस नहीं थे, लेकिन कांग्रेस को जो फायदा हुआ वो बाय प्रोडक्ट ही लोगों की नाराजगी के कारण मिला हुआ था। यानी कांग्रेस को जो वोट मिला वो प्रो कांग्रेस वोट नहीं है, लेकिन वो एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस को मिले हैं, जिसका फायदा उनको शहर में नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि शहर की समस्या अलग थी। हालांकि शहरों में बसने वाले व्यापारी, खासतौर पर अहमदाबाद और सूरत, जिन्होंने लाखों की संख्या में रैलियां निकाली, सभाएं की, और उनकी नाराजगी काफी थी जीएसटी और नोटबंदी को लेके, लेकिन शहरों का जो मतदाता है वो गांव से थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। जब से भाजपा शासन में आई उनको एक ही बात बताई गई कि आपकी जो सुरक्षा है, आपकी जो स्थिरता है, वो भाजपा सरकार के कारण है। तो बड़े शहरों में कॉम्युनल कार्ड चला, जहाँ पे लोग भाजपा से नाराज होने के बावजूद भी भाजपा है तो मुसलमानों से हमें बचाएगी, वो उनकी जो मानसिकता है उसका फायदा भाजपा को हुआ, तो गांव कांग्रेस की तरफ गए और शहर भाजपा की तरफ है। हालांकि शहरों में भी बड़ी मात्रा में नाराजगी होने के बावजूद भी वो कन्वर्ट नहीं हो पाए वोटों में कांग्रेस की तरफ।
शहर बनाम गाँव के वोटों का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल। अहमदाबाद की नरोदा पाटिया वो बस्ती है जिसे घेर कर दंगाइयों की भीड़ ने 28 फरवरी 2002 को लगभग 10 घंटे तक बिना रोक टोक कत्लेआम आगजनी की बलात्कार किए। इस सांप्रदायिक हिंसा में 97 लोग मारे गए थे। हिंसक भीड़ का नेतृत्व बीजेपी विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के बाबू बजरंगी कर रहे थे। दोनों को इस मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अब जब बीजेपी छठी बार गुजरात में सरकार बनाने जा रही है, इस बस्ती के बाशिंदों का हाल जानने के लिए हमारे सहयोगी राजेश जोशी नरोदा पाटिया पहुंचे। सुनिए उनकी ये बातचीत।
ये अहमदाबाद के पास नरोदा पाटिया बस्ती है। 2002 के दंगों में जिसका काफी जिक्र हुआ था, अखबारों में सुर्खियां छपी थीं, टेलीविजन में यहाँ की तस्वीरें नजर आई थीं। ये नरोदा पाटिया छोटा मोटा धंधा करने वालों की बस्ती है। कोई ठेला लगाता है, कोई कारखाने में काम करता है, कोई मजदूरी करता है और किसी तरह अपनी गुजर बसर ये लोग करते हैं। एक छोटी सी पतली गली है जिसमें मैं खड़ा हूँ। ये स्कूल है, इकरा प्राथमिक शाला इसका नाम है, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। और इस स्कूल को बनाने वाले जो सज्जन हैं वो मेरे सामने खड़े हैं। आपका नाम क्या है?
नजीर खान रहीम खान पठान।
नजीर खान रहीम खान पठान, इस स्कूल को क्यों बनाया आपने और 2002 में जो दंगे हुए थे उसके बाद ही क्यों बनाए?
2000 दंगे होने की वजह से यहाँ की जो माइनॉरिटी के बच्चे जो है छोटे छोटे, वो दूसरे स्कूल में पढ़ने जाने से इनकार करने लगे। उन्होंने ये महसूस किया कि हमको लोग मारेंगे, डर लगती है, वहाँ जाने में डर लगती है, रास्ते में कोई रुकावट करके हमको मारे ना। बस इसकी वजह से हमने एक ध्येय करा, हमने एक निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि हम यहाँ पर एक स्कूल बना रहे।
मेरे साथ यहाँ पे इसी बस्ती में रहने वाले और भी लोग हैं। एक महिला हैं, खातून, आपका क्या नाम है?
जुलेखा बानू सरदार अहमद चौधरी।
तो जुलेखा साहबा, क्या अब 2002 से तो बहुत बात आगे बढ़ गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बन रही है, छठी बार बन रही है, तो अब आप भूल चुकी हैं उस बात को या याद है?
हम तो जब तक हमारी सांस रहेगी जब तक हमें याद रहेगी वो बात, हम कभी भूलेंगे नहीं वो बात को। ये रात दिन हमारे साथ रहने वाले, हमने उनसे इतनी पनाह मांगी तो उन्होंने हमारे को लकड़ियों से डंडों से मार मार के हमें भगाया, बोले यहाँ कोई तुम्हें सहायता नहीं मिलेगी, यहाँ बैठने तक के भी नहीं दे रहे थे।
लेकिन ये भी तो बात है कि न्याय तो हुआ ना, जब अदालत में गए लोगों को सजा मिली है तो उससे जख्मों पे फाहा तो रखा गया।
सजा तो जरूर उन्हें मिली है, फिर भी वो पैरल पे छूट रहे हैं, आ रहे हैं, फिर भी हमको, हमारे साथ तो प्रोटेक्शन है, फिर भी हमें कभी कहीं भी कुछ होता है तो हमें इतनी डर लगती है कि फिर कभी वो आरसा यहाँ ना हो जाए।
आपसे बात करूंगा, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम सलीम रोशन अली शेख।
सलीम रोशन अली शेख,
तो अब तो 2002 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। लोग कहते हैं कि गुजरात के मुसलमान वो सब भूल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ना भी चाहिए उनको। कब तक वो 2002 के जख्मों को सहलाते रहेंगे?
2002 के जख्मों को तो मरते दम तक हम नहीं भूल सकते, क्योंकि जो घटना हमारे सामने हुई है और जो मंजर हमने देखा है, हमारा नौजवान लड़का 27 साल का हमारे सामने शहीद कर दिया, हमने अपनी नजरों से देखा है, वो मंजर हम कैसे भूल सकते हैं। और उस आरोपी को, 5 के 6 आरोपी थे, उनको सजा भी मिली है उनके अंदर उसको, लेकिन जो सजा मिलनी चाहिए बहुत कम है। उनको 35-60 आदमियों का आरोपी के नाम थे, उसमें 32 आदमी को सजा मिली और 30 आदमी निर्दोष छूट गए। तो आज हमारा नौजवान 27 साल का लड़का हमारी नजरों के सामने उन्होंने शहीद कर दिया, पानी की टांकी के पास, गंगोत्री के पास, और हमने अपनी नजरों से देखा ये मंजर। हाथ में एक तलवार, ये छोटी रिवॉल्वर, ऐसे ऐसे लोग हमारे नजरों के सामने पाइप मार के हमारे लड़के को गिरा दिया, वो हमने नजरों अपने मंजर देखो, मंजर हम कैसे भूल सकते हैं।
अच्छा, यहाँ जो स्कूल है और स्कूल के बगल में मस्जिद भी है, ये स्कूल में आप क्या क्या पढ़ाते हैं? क्योंकि जो अब नस्ल है, बच्चे जो हैं, कभी वो पूछते हैं बच्चे के, पुरानी कहानियां पूछते हैं कि क्या हुआ था, क्या उनको घरों में बताते होंगे ना कि 2002 में क्या हुआ?
उनको बताते हैं कि हम जो उन्होंने किया वो हम नहीं करेंगे, जो उन्होंने किया हिंसा को हिंसा के सामने हम हिंसा नहीं करेंगे, हम लोगों को माफ करके भी अहिंसा का पात्र हम इनको बनाते हैं, कि हमको ऐसा काम नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, बिन सांप्रदाय के, हम बच्चे आगे आने वाली नस्ल को ये हिंदू के प्रति नफरत ना होनी चाहिए, हम एक दूसरे को मिलकर भाईचारे से रहे और गले मिले, मैं ये चाहता हूँ। इसी तरह से मैं बच्चों को भी यही आदेश करता हूँ।
जख्म तो जाहिर है नहीं भरे हैं इनके, लेकिन जिंदगी जीने की जिजीविषा इनके अंदर है और उसी के सहारे ये अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। लगता है कि अब खुश भी हैं थोड़ा बहुत, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आदमी हमेशा गमजदा हो।
ऊपर वाले के साथ जी रहे हैं तो खुश तो रहना पड़ेगा, कब तक हम वो लेके बैठेंगे? खुश तो है, फिर भी कहीं भी कुछ होता है तो हमें बहुत जल्दी वो दिन आ जाता है।
नरोड़ा पाटिया से आंखों देखी सुना रहे थे हमारे सहयोगी राजेश जोशी, मार्मिक रिपोर्टिंग। और अब कार्यक्रम में खेल समाचार सुनने का वक्त है। सामने इंदु पांडे मौजूद हैं। इंदु, क्या कह रहे हैं आज खेल की खबरों में?
खेल की खबरों में है टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला कल कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम टेस्ट और वनडे सीरीज जीतने के बाद कल से शुरू हो रही T20 सीरीज में भी श्रीलंका पर अपना दबदबा कायम रखने के पूरे इरादे रखेगी। क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन क्या कहते हैं श्रीलंका की मनस्थिति को लेकर के?
कुछ ना कुछ आए हैं तो कुछ ना कुछ वापस लेके जाए, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम चल रहा है और जो मेरे ख्याल से एक जो मेंटल कंडीशन होगी, जो मनोवैज्ञानिक दबाव है श्रीलंकन प्लेयर्स पे, वो मुझे लग रहा है कि यही इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया जीतना चाहिए।
और वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी को देखते हुए प्रबंधन कुलदीप यादव के स्थान पर उन्हें श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के प्लेइंग 11 में जगह दे सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा, ICC टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाजों की जो लिस्ट निकली है उसमें काफ़ी ऊपर पहुंच गए हैं। पुजारा टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में 853 अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं, तो वहीं टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली 893 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं।
तो बड़ी अच्छी बात है
जी। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ लगभग 2 साल से टॉप पर बने हुए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में तीसरे एशेज टेस्ट में दोहरा शतक जमाया और अब वो सर्वाधिक रैंकिंग अंक के डॉन ब्रैडमैन के खिलाफ के रिकॉर्ड के काफ़ी करीब पहुँच गए हैं। तो ये थी खेलों के
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इंदु पांडे। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त आ चला है।
BBC समाचार। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनावी नतीजों को मोदी ने विकास और GST पर मुहर बताया है, लेकिन अपने चुनावी भाषणों में उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया। हुती विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर मिसाइल दागे हैं। रूस और चीन ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की तीखी आलोचना की है। स्पेन के स्वायत्त इलाके कैटलोनिया में अगले गुरुवार को होने जा रहे चुनाव में दोनों विपक्षी पार्टियों के बीच बहुत कम अंतर दिखाई दे रहा है। BBC समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के इस अंक में आज बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक bbchindi.com का डिजिटल पन्ना आपके साथ है। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।